धैर्य के गायब हुए 6 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत गया था। आहान और आयुष अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि वे जल्द से जल्द कार्तिका तक पहुंच सके। कार्तिका के ना मिलने पर आहान सीधे राजवीर शर्मा के ऑफिस पहुंचा। उसका पहला शक राजवीर पर ही गया, क्योंकि कल रात ही राजवीर ने आहान को धमकी दी थी। उससे अलग अचानक सुबह सुबह आहान को इतने गुस्से में देखकर राजवीर भी हक्का बक्का रह गया। ऊपर से आहान ने उसके माथे के बीचों बीच गन पॉइंट कर रखी थी। आहान की उंगली ट्रिगर पर थी, जिसे वो किसी भी पल दबा सकता था। आहान ने राजवीर की आंखों में आंखें डालकर धीमी लेकिन सर्द आवाज में कहा, अगले 1 मिनट में अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि मेरा बेटा कहाँ है, तो आई स्वेयर राजवीर शर्मा, आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आहान की बात सुनकर राजवीर का डर जैसे हवा में गायब हो गया हो। उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी। वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा था। राजवीर अच्छे से जानता था कि ऐसे मौके पर आहान उसकी जान नहीं ले सकता था। राजवीर अचानक हंसते हुए रुका और सिर हिलाकर बोला, ऐसा है क्या? फिर ले लो मेरी जान, मैं खुद तुम्हें परमिशन देता हूँ। आहान के अचानक अपने कैबिन में घुस आने और माथे के बीचों बीच गन पॉइंट करने की वजह से पहले राजवीर घबरा गया था, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। राजवीर के चेहरे के भाव देखकर आहान ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है। उम्मीद है अपने आखिरी वक्त में तुम झूठ नहीं बोलोगे, क्योंकि मैं झूठ सुनने के मूड में नहीं हूँ। सीधे सीधे बताओ मेरा बच्चा कहाँ है, वरना तुम्हें मारने से पहले मैं 1 मिनट भी नहीं सोचूंगा। आहान की बातों से राजवीर समझ गया था कि जरूर उसके बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया है। ऐसे हालात में आहान कभी राजवीर की जान नहीं ले सकता था। उसने गन को अपने माथे से बिल्कुल धीरे से हटा दिया था। राजवीर आहान के चेहरे पर तड़प देखकर मुस्कुरा रहा था। राजवीर ने एविल स्माइल के साथ कहा, मुझे अच्छे से पता है कि ऐसी सिचुएशन में तुम कभी मेरी जान नहीं लोगे। कल रात तो मुझे बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे ना, इतनी ही औकात है तो जाओ, जाकर ढूंढ लो अपने बच्चे को। वो तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन उससे पहले तुम दुनिया को अलविदा कह दो राजवीर शर्मा, आहान ने सिर हिलाकर कहा और फिर गन को लोड करते हुए फिर से राजवीर के माथे पर रख दिया। आहान के चेहरे के भाव बेहद सर्द थे और इस वक्त उसका यह अंदाज देखकर कोई भी घबरा सकता था। राजवीर को लगा आहान खाली धमकी दे रहा है, लेकिन तभी वहां गोली चलने की आवाज आई। अगर राजवीर ने ठीक वक्त पर आहान का हाथ साइड नहीं किया होता तो वो गोली उसके माथे को चीर कर निकल जाती। राजवीर का कमरा साउंड प्रूफ था, इस वजह से आवाज बाहर नहीं गई। ऊपर से बाहर आहान के आदमी भी खड़े हुए थे। राजवीर के चेहरे पर डर से पसीने की बूंदें थीं। वो आहान पर चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गया है क्या तुम? अभी मुझे गोली लग जाती तो वैसे ही तुम अपने बेटे का पता कभी नहीं कर पाते। वो तो तुम पता भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने उसे किडनैप नहीं करवाया है। अगर तुमने उसे किडनैप करवाया होता तो इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर डर के भाव नहीं होते। तुम मेरे बच्चे को लेकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे होते। मैं तुम जैसे घटिया इंसान को अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम अब बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हो तो तुम अच्छे से जानते हो कि मेरा बच्चा तुम्हारे पास नहीं है, आहान ने ठंडी आवाज में कहा। उसे 1 मिनट भी नहीं लगा राजवीर का सच पता करने में। वहीं राजवीर रुमाल से अपने माथे को साफ कर रहा था। उसका हाथ कांप रहा था। उसने वहां पर चीखते हुए कहा, पागल आदमी, अगर सब पता ही है तो फिर मेरे साथ ऐसा सलूक करने का क्या मतलब हुआ? मैं बस तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाना चाहता था। ये बड़ी बड़ी बातें तुम फोन कॉल पर ही कर सकते हो, वरना आहान ओबेरॉय के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है, आहान ने सिर हिलाकर कहा। आहान वहां राजवीर के साथ बहस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। उसे राजवीर को सबक सिखाना था और वो सिखा चुका था। अपनी बात खत्म करके आहान जाने के लिए पलटा ही था कि पीछे से राजवीर ने तेज आवाज में कहा, मेरी औकात कितनी है ये तुम अच्छे से जानते हो। आज मैंने भले ही कुछ नहीं किया होगा, लेकिन आगे कुछ नहीं करूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। राजवीर आहान को उकसाला था और इस वक्त उसके चेहरे पर ईविल स्माइल थी। वो नहीं जानता था कि इस वक्त आहान ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुस्से में है, और एक बहुत पुरानी कहावत है कि कभी गुस्से में आए शेर को नहीं छेड़ना चाहिए। वही राजवीर के साथ हुआ। उसकी बातों ने आहान के गुस्से की आग में घी का काम किया। आहान तुरंत उसकी तरफ पलटा और उसका गला पकड़कर बोला, ठीक है, फिर एक बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। फिलहाल मुझे मेरे बच्चे को ढूंढना ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं तुम पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन जिस वक्त मुझे अपना बच्चा मिल गया, उसके अगले 1 घंटे में तुम्हारी सांसें खत्म हो जाएंगी राजवीर शर्मा, और यह आहान ओबेरॉय का वादा है। मौत हमेशा अचानक से दस्तक देती है, इस वजह से लोग अपनी आखिरी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। मैंने तो तुम्हारी मौत का टाइम तक तुम्हें बता दिया, उम्मीद है तुम अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर लोगे। आहान के इतना कहने के बाद भी राजवीर के चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था। होता भी कैसे, वो बहुत पुराना खिलाड़ी था। आहान के धमकी देने के बाद राजवीर ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, मुझे मेरी आखिरी इच्छाएं पूरी करने का मौका दे ही रहे हो तो आखिरी इच्छाएं भी सुनकर जाओ। आहान ओबेरॉय, मेरी पहली और आखिरी इच्छा यही है कि तुम्हारी पत्नी और प्यारे बेटे को जान से मार दूं, ताकि तुम पहले की तरह पागल हो जाओ जो तुम्हें बांध कर रखना पड़े। राजवीर की बातें सुनकर आहान का खून उबल रहा था। उसने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांधी और फिर राजवीर के पास जाकर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारा। वो पंच इतना जोरदार था कि राजवीर के होठों के कोनों से खून बहने लगा। आहान उसे वैसे ही छोड़कर वहां से बाहर निकल गया था। राजवीर ने अपने होठों के कोनों से खून साफ किया और अपने मन में कहा, तुम यहां अकेले आए हो और इतने बौखलाए हुए हो, मतलब चाहत इस बारे में नहीं जानती। तब तो तुम्हारी प्यारी बीवी को इस बारे में बताना बनता है। उसे भी तो पता चले कि उसका प्यारा पति, जो कल रात तक उन सबकी रक्षा करने का वादा कर रहा था, उसकी नाक के नीचे से कोई उसके बच्चे को चुरा कर ले गया। राजवीर जैसे इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। उसने तुरंत चाहत को कॉल किया। वहीं आहान के बिना चाहत नींद के आगोश में थी। दवाइयां देने के बाद उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता था और नींद आने लगती थी। नींद में भी चाहत बार बार धैर्य और आहान को ही याद कर रही थी। शिवानी उसके पास बैठी थी। चाहत का मोबाइल बजा तो वो हड़बड़ाकर जल्दी से उठी। उसे लगा आहान का कॉल है। चाहत ने बिना नंबर चेक किए जल्दी से कॉल रिसीव किया और कहा, आहान आप कहाँ रह गए? और धैर्य, अब उसकी तबीयत कैसी है? राजवीर को पहले ही इस बात का शक था कि चाहत इस बारे में नहीं जानती कि उसका बच्चा किडनैप हो गया है। चाहत की बातों ने उसके शक को यकीन में बदल दिया था। राजवीर ने अपना टोन भारी किया और इमोशनल होकर बोला, चाहत ये मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा पापा। बेटा आहान यहाँ पर आया था और मुझे पता चला है कि धैर्य को किसी ने किडनैप कर लिया है। मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा नहीं किया है। हाँ, कल रात को मैंने गुस्से में धमकी जरूर दी थी। मैं कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हूं, लेकिन एक छोटे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं अच्छे से जानती हूँ आप उल्टी सीधी बातें करके मेरे और आहान के रिश्ते को खराब करना चाहते हैं। मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ मिस्टर शर्मा, और खुद को मेरा पापा कहना बंद कीजिए। हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, चाहत गुस्से में राजवीर पर चिल्लाकर बोली।
वहीं राजवीर का कॉल आने का सुनते ही शिवानी के चेहरे का रंग उड़ गया था। राजवीर आगे कुछ कहता उससे पहले चाहत ने कॉल काट दिया था। फिर उसकी नज़र शिवानी पर गई, जो काफी घबराई हुई लग रही थी। चाहत राजवीर की बातों पर यकीन तो नहीं करना चाहती थी, पर जिस तरह से शिवानी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदले थे, उसे देखकर उसे दिल ही दिल में डर लगने लगा। चाहत ने घबराई आंखों से जल्दी से पूछा, मॉम आप इस तरह परेशान क्यों लग रही हैं? क्या आहान धैर्य को लेकर वापस आ गए हैं? चाहत ने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की और राजवीर की बातों के बारे में शिवानी को कुछ नहीं बताया। वो बस आते ही होंगे, शिवानी ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। चाहत ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया था। फिर उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। शाम के लगभग 4 बजने को आए थे। चाहत को सोते हुए काफी समय हो गया था। इतना टाइम हो गया और पता ही नहीं चला। अब तक तो आहान को आ जाना चाहिए, मैं उसे कॉल करके पूछ लेती हूँ वो कहाँ रह गए, चाहत ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। और फिर अपना मोबाइल निकालकर आहान को कॉल करने को हुई, तभी शिवानी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। मैंने कहा ना चाहत, आहान आता ही होगा। क्या तुम्हें मेरे बेटे पर यकीन नहीं है कि वो तुम्हारे बच्चे का ख्याल रख पाएगा? तुम भूल रही हो, वो बच्चा तुम्हारा अकेली का नहीं है, शिवानी ने खुद को मजबूत करके कहा। हालांकि उसे दिल ही दिल में बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसे चाहत को ऐसे शब्द कहने पड़ रहे थे। शिवानी की भीगी हुई पलकें देखकर चाहत की आंखों से आंसुओं का कतरा बह गया था। उसने सुबकते हुए कहा, मुझे ये सब बोलकर मुझसे ज्यादा तकलीफ तो आपको हो रही है। आप सब झूठ बोल रही हैं ना? मुझे अभी अभी राजवीर शर्मा का कॉल आया था और उसने कहा कि मेरा बेटा किडनैप हो गया है। तो क्या सुबह से आप मुझसे ये छुपाने की कोशिश कर रही थी? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगी। शिवानी ने कुछ नहीं कहा था, पर फिर भी चाहत सब समझ गई थी। उसकी हालत ठीक नहीं थी, फिर भी वो बिस्तर से उठकर दौड़कर नीचे जाने लगी। शिवानी भी तेज कदमों से चलते हुए उसके पीछे आ रही थी। वो रोते हुए बोली, चाहत बेटा प्लीज रुक जाओ, हमारे धैर्य को कुछ नहीं होगा, आहार उसे ले आएगा। शिवानी ने चाहत को समझाने की कोशिश की, पर वो दौड़ते हुए नीचे आ गई थी। अब उसके कदम दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन चाहत की तबीयत ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि तभी उसे आहान ने अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया था। आहान के चेहरे पर लाचारी के भाव थे। शिवानी जब दौड़कर बाहर आई, उसने आहान को देखा तो वो सब समझ गई थी कि इतनी देर में भी उन्हें धैर्य नहीं मिला था। वहीं उन सबसे अलग अक्षरा को अब तक गार्ड्स ने कार्तिका के आने की बात नहीं बताई थी। वो तो कार्तिका के भाई बहनों के साथ बैठकर टीवी पर कार्टून देखने में लगी हुई थी। तो दूसरी तरफ कार्तिका अभी भी उम्मीद लगाए बैठी थी कि अक्षरा उसे कॉल करेगी। कार्तिका इस वक्त एक पार्क में बैठी हुई थी। उसने खुद के चेहरे को दुपट्टे से ढक रखा था और गोद में धैर्य को ले रखा था। इस बच्चे को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है और अब तो ये रो भी नहीं रहा। अगर इसे अस्पताल लेकर गई तो मैं पकड़ी जाऊंगी, कार्तिका ने घबराहट के साथ कहा। उसने धैर्य को अपनी गोद में हिलाया, पर फिर भी धैर्य कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो धैर्य को बहुत मुश्किल से संभाल पा रही थी और अब तो वो बुखार की वजह से बेहोश हो गया था। उसकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी और ये देखकर कार्तिका का चेहरा डर से पीला पड़ गया था।